मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जीवाधिकार तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। उसमें जो अंतिम सूत्र था उस सूत्र में एक चरम शब्द और उत्तम शब्द था, जिस पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक जानकारी दी है। चरमस्य देहस्य, चरम का अर्थ होता है अंतिम शरीर। तो अंतिम शरीर के उत्कृष्टत्व प्रदर्शनार्थम उत्तम ग्रहणम, अंतिम शरीर की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए उत्तम शब्द का ग्रहण किया गया है। नार्थांतर विशेषोस्ति, कोई दूसरा अर्थ नहीं लेना, यही एक अर्थ है कि अंतिम शरीर है इसलिए उत्तम है, क्योंकि उससे उत्तमार्थ की सिद्धि हो रही है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो शरीर उत्तम है। जीव स्वभाव लक्षण साधन विषय स्वरूप भेदाश्च गति जन्म योनि देह लिंगानपवर्तितायुष्क भेदाश्चाध्यायेस्मिन् निरूपिता भवन्तीति संबंधः। कुल मिलाकर दूसरे अध्याय में क्या क्या था, तो बोलते हैं सबसे पहले तो जीव का स्वभाव था। पांच प्रकार के भाव होते हैं, वो जीव के निजी भाव होते हैं, इसलिए उनको स्वभाव कहते हैं। अब उस स्वभाव के भी दो भेद हैं, विभाव स्वभाव और शुद्ध स्वभाव, तो दोनों को ले लिया। फिर जीव का लक्षण बतलाया, उपयोग लक्षण। फिर और साधन विषय स्वरूप सब भेद बतला दिए जीव के, गति बतलाई, जन्म बतलाए, योनियां बताई, देह यानी पांच प्रकार के जो शरीर होते हैं वो बतलाए, तीन प्रकार के जो लिंग होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग वो बतलाए, फिर अनपवर्तित आयुष्क ये भी बतला दिए। तो इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में इन सब का निरूपण था, ऐसा संबंध जोड़ लेना। अथ तृतीय अध्याय, अब तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन था, प्रमाण नयों का वर्णन था। अब दूसरे अध्याय में जीवाधिकार जीव का वर्णन था। तीसरे और चौथे अध्याय में जीव के निवास स्थान का वर्णन, जीव कहाँ रहते हैं, सब वर्णन है। अब देखिए, भव प्रत्ययो बधिर्देव नारकाणाम इत्येव मादिश नारका श्रुतास्ते ततः पृच्छति केते नारका इति। पहले अध्याय में एक सूत्र आया था, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम, अवधि ज्ञान का वर्णन था। तो उसमें लिखा था कि भव है कारण जिसका, ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकों को होता है। केते नारक, वो नारक कौन है, तत् प्रतिपादनार्थम, उसका प्रतिपादन करने के लिए तद अधिकरण निर्देश क्रियते, उनका जो ठिकाना है उसका निर्देश किया जाता है, अर्थात उनका जो स्थान है उसको सूचित किया जाता है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनांब वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। ये प्रभा भूमि सबके साथ लगाना, रत्न प्रभा भूमि, शर्करा प्रभा भूमि, वालुका प्रभा भूमि, पंक प्रभा भूमि, धूम प्रभा भूमि, तमह प्रभा भूमि और महातमह प्रभा भूमि। इस तरह ये सात भूमियां, सप्त अधः अधः नीचे नीचे प्रतिष्ठित हैं, किस पर, घनांब वाताकाश प्रतिष्ठा, घन वलय, घन वात वलय, फिर घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय, तीन वात वलय। वात वलय का अर्थ होता है वायु के घेरे, यानी एक प्रकार से वेष्टन जैसा हो, वायु से घिरे हुए, जो पूरा लोक तीन प्रकार की वायु से घिरा हुआ है, संपूर्ण लोक का जो अलोकाकाश और लोक, जहां से लोक शुरू होता है वहां पर एकदम सीधे सीधे सब लोक के अंदर स्थित पदार्थ नहीं आ जाते, सबसे पहले वात वलय होते हैं वहां लोक के चारों तरफ बाहर की तरफ, और वो वात वलय तीन होते हैं, घन वात वलय, फिर घनाम्ब वात वलय जिसको घनोदधि भी कहते हैं, फिर केवल वात यानी तनु वात वलय, और फिर अंत में आकाश बाहर लोकाकाश में, तो उन पर प्रतिष्ठा ये भूमिया प्रतिष्ठित है, स्थित है। रत्नंच शर्करा च वालुका च पंकश्च धूमश्च तमश्च महातमश्च रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमांसी। प्रभा शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ना है। साहचर्या तत्शब्दम, साहचर्य के वश वो शब्द तत्शब्द्यम, चित्रादि रत्न प्रभा सहचरिता भूमि रत्न प्रभा। चित्रा जो है, चित्रा पृथ्वी, ये अभी जब जिस पृथ्वी पर अपन है ना, वो भी नीचे की भूमि का ऊपर वाला हिस्सा है, ये सब पूरी रत्न प्रभा का ही हिस्सा है। फिर शर्करा प्रभा सहचरिता भूमि रत्न शर्करा प्रभा, तो यहां पर रत्नों जैसी प्रभा रहती है भूमि की, पहली पृथ्वी में। फिर शर्करा है ना, शक्कर जैसी प्रभा रहती है, अथवा शर्करा का अर्थ जो रेत के थोड़े थोड़े छोटे साइज के और एकदम बारीक भी नहीं एकदम बड़े भी नहीं, जो दाने होते हैं उसके जैसी प्रभा, शर्करा प्रभा। फिर बालू का प्रभाव, बालू माने एकदम बारीक जो रेत है उसके जैसी प्रभा वाली। फिर पंख प्रभा यानी कीचड़ जैसी वहाँ कांति है। धूम प्रभा यानी धुएं जैसी। फिर तमह प्रभा अंधकार जैसी, और महातमह प्रभा बिल्कुल प्रगाढ़ अंधकार जैसी महाभूमि है। जैसे स्वर्ग के पटल भूमि का आश्रय लेकर के व्यवस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन नरक के आवास जो होते हैं वो इन भूमियों में रहते हैं। तो सात नरक नहीं है, सात भूमियां हैं, और इनमें नरक जो होते हैं उनका वर्णन आगे आने वाला है, पर बोलचाल में आता है कि सात नरक होते हैं, सात भूमियां हैं, नरक आगे बता रहे हैं। घनो घनवात, अंबु अंबुवात, वातस्तनुवात, ऐसे तीन शब्द जो निकाले उसमें सूत्र में से, उससे ये अर्थ निकाला है। सर्वायिता भूमियो घनो दधि वलय प्रतिष्ठा, ये सभी भूमियाँ घनोदधि वलय पर स्थित हैं। घनोदधि वलय घनवात वलय प्रतिष्ठम, घनोदधि वलय जो है वो घनवात वलय पर प्रतिष्ठित है। नाम है ये वलयों के, और उसमें ऐसे गुण भी हैं। घनोदधि का अर्थ होता है उसमें पानी भी है और वायु भी है, और घनवात का अर्थ होता है घनी वायु है, और तनुवात का अर्थ होता है पतली वायु है। तो घनवात वले तनुवात वले प्रतिष्ठम, घनवात वले जो है वो पतली वायु वाले वले पर प्रतिष्ठित है, तनुवात वले हम आकाश प्रतिष्ठम, और तनुवात वले जो है वो आकाश पर स्थित है। आकाशम अप्रतिष्ठम, आकाश किसी पर स्थित नहीं, क्योंकि अब ये सब बताते जा रहे हैं उस पर स्थित है, उस पर स्थित है, तो कोई पूछ बैठे, शंकाकार हो गया, कौन रोक सकता है, कोई पूछ बैठे कि आकाश किस पर है, तो बोले आकाश स्वप्रतिष्ठित है। घन वात है, घनी वायु है, सघन वायु है। और उसके माप भी बता रहे हैं, त्रीण्यप्येतानि वलयानि प्रत्येकं विंशति योजन सहस्र बाहुल्यानि, तीनों बात वाले जो होते हैं वो 20,000 योजन मोटे होते हैं। सप्तक ग्रहण संख्यांतर निवृत्त्यर्थम, सात का ग्रहण इसलिए किया यहाँ पर भूमियों में कि कोई दूसरी संख्या न ले लो, कोई बोले कि नहीं नौ होते हैं, ऐसा नहीं, नाष्टो न नव इति न चेति, अष्ट भी नहीं है नौ भी नहीं है। अधोधो वचनम तिर्यक प्रचय निवृत्त्यर्थम, अध अध का जो कथन आया है उससे ये समझ लेना कि ऐसे तिरछे नहीं है नरक, ये नरक की भूमियाँ ऐसी तिरछी नहीं है, भूमियाँ ऊपर फिर उसके बाद नीचे फिर उसके नीचे, ऐसे नीचे नीचे है, बीच बीच में वलय भी, वात वलय भी है, वात वलय केवल अंत में ही हुआ ऐसा नहीं है, बीच बीच में भी है। किन ता भूमियो नारकाणाम सर्वत्र आवासा आहुसुत कश्चित क्वचित दिति तन निर्धारणार्थम, क्या उन भूमियों में सब जगह नरकों के निवास है, नारकों के, अथवा कहीं कहीं पर है? तो आचार्य कहते हैं, तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम, नारकों के निवास उन सात भूमियों में जो नरक हैं उनके अंदर हैं। वो तो भूमि है, जैसे चूहे लोग रहते हैं बगीचे में या खेतों में, तो वो अपने बिलों में रहते हैं, पूरे खेत में नहीं रहते, वो अपने अपने ठिकानों पर रहते हैं। वैसे ये नरक जो होते हैं, नरक का अर्थ बिल होता है, गड्ढा होता है, तो उसमें रहते हैं ये। तो आचार्य कहते हैं कि नरक कितने हैं, तासु उन सात भूमियों में त्रिंशत शत सहस्राणी, 30,00,000, पहली पृथ्वी में 30,00,000 बिल हैं नरकों के, दूसरी में पंचविंशति 25,00,000 हैं, तीसरी में पंचदश 15,00,000 है, चौथी में दश 10,00,000 है, पांचवी में त्री 3,00,000 है, ये 83,00,000 तो यही हो गए, और छठी में पंचो नैक नरक शत सहस्राणी, और छठी में 5 कम 1,00,000 यानी कितने, 95,000 95,000 और सातवीं में पंच चैव, पांच ही नरक है सातवीं पृथ्वी में, रौरव महारौरव कुंभीपाक, ऐसे पांच नाम है वहां पर, वहां केवल पांच ही नरक है। तो इस तरह 84,00,000 नरक होते हैं, पृथ्वियां या भूमिया सात होती है, और जो बिल होते हैं नरक के वो 84,00,000 होते हैं, 84,00,000। चतुरशीति 84, संस्कृत में उनको चतुरशीति बोलते हैं। और ये जो इतने सारे जो नरक हैं वो इसे अंडरग्राउंड कोई बेसमेंट में कई फ्लोर्स बना दिए जाए, इम्पॉसिबल नहीं है, और है भी कई जगह, तो फिर वहां पर इसमें आचार्य कहते हैं कि सात तो पृथ्वियां हैं, लेकिन अगर फ्लोर्स की बात करो, पाथड़े जिसको कहते हैं, प्रस्तर जिसको कहते हैं, तो फिर 49 है। 49 मीन्स 49। तो उसमें कैसा क्रम रहेगा? तो बोले पहले पृथ्वी में 13 पाथड़े हैं, फिर दो दो कम करते जाना, करो। दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3, और सप्तम पृथ्वी में एक फ्लोर है, बस एक ही पाथड़ा है। तो इतने पाथड़ों में इतने नरक हैं, ये लोकान योग से विशेष विस्तार पूर्वक इसको जाना जा सकता है। लोकान योग जिसको करणान योग भी कहते हैं, फिर इसमें जो वेदनाएं हैं उसको बता रहे हैं। नारका नित्याशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारक जो होते हैं, उसमें रहने वाले जो जीव हैं नारक, वे नित्य ही अशुभ तरलेश्या वाले होते हैं, अशुभतर परिणाम वाले होते हैं, अशुभतर देह वाले होते हैं, अशुभतर वेदना वाले होते हैं, और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। ये वहां का स्वभाव है। सप्तम सातों पृथ्वियों की यही व्यवस्था है। प्रथमा द्वितीय यो कापोती लेश्या, पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोती लेश्या है, ये लिख सकते हैं जिनको लिखना हो तो। पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोती लेश्या है, पहली में जगन्य कापोती, दूसरी में मध्यम। तृतीयायाम उपरिष्टात कापोती अधो नीला, तीसरी पृथ्वी के ऊपर वाले पाथड़ों में कापोती लेश्या है, तीव्र कापोती है, क्योंकि दूसरी तक मध्यम कापोती हो गई थी, तीसरी में तीव्र कापोती है, और अधो नीला उससे नीचे के जो पाथड़े हैं, तीसरी के नीचे नीचे वाले पाथड़े हैं, उसमें नील लेश है, यानी कापोती से भी जो खराब लेश होती है वो नील लेश है, पर जघन्य नील है। और ऐसा नियम है कि तीसरी पृथ्वी तक से निकलने वाले नारक तीर्थंकर बन सकते हैं, अगर उन्होंने पहले से बांध रखा हो तो, तीर्थंकर पुण्य, पर नील लेश्या वालों में तीर्थंकर के जीव नहीं जाते, कापोती लेश्या वाले ही होंगे। तीसरी पृथ्वी से निकलकर तीर्थंकर बनने वाले जो हैं नारक, वो कापोती लेश्या तक ही जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नरकों में कृष्ण तीर्थंकरों का संबंध पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी में तो होता है, जाना हो सकता है, पर वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे, पहली पृथ्वी तक क्षायिक जा सकते हैं और उससे आगे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जाते हैं। तो अंतर्मुहूर्त के लिए रास्ते में छूट जाता है वो सम्यक दर्शन नरक जाते समय, वापस वहां जाकर शरीर पर्याप्ति होने के बाद उत्पन्न हो जाता है, तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंद हो चुका है ऐसे जीवों के लिए। तो ये तीन हो गए, जगन्य कापोती लेश्या कौन से पृथ्वी में? पहली पृथ्वी में। मध्यम कापोती दूसरी में, और तीसरी पृथ्वी के ऊपर ऊपर वाले पाथड़ों में तीव्र कापोती है, और नीचे वाले पाथड़ों में नील है, जगन्य नील है। चतुर्थ्याम तीसरी में, जहां तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं जा सकते, अधो नीला, चतुर्थ्याम नीला, चौथी पृथ्वी में पूरी नील लेश्य, मध्यम नील लेश्य। पंचम्याम ऊपरी नीला, पंचमी पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में नील लेश्य है, अध कृष्णा, नीचे वाले भाग में कृष्ण लेश्य है। षष्ठ्याम कृष्णा, षष्ठी में छठी में भी कृष्ण लेश्य है। सप्तम्याम परम कृष्णा, सातवें में परम कृष्ण लेश्य है, तो परम कृष्ण लेश्य है तो छठी में मध्यम कृष्ण हुई, और पांचवी के निचले भाग में कौन से नील कौन से कृष्ण हुई, जगन्य कृष्ण हुई। ऐसे नौ भेद हो गए तीन लेश्याओं के, सात पृथ्वियों में, और तीनों लेश्याएं तीन तीन पृथ्वी तक जा रही है, उत्तम मध्यम जगन्य करके, तीव्र मध्यम जगन्य करके। स्वायुष प्रमाण अवधृता द्रव्य लेश्या उक्ता, ये अपनी आयु पर्यंत चलने वाली द्रव्य लेश्याएं हैं, माने उनके शरीर का रंग ऐसा है। भाव लेश्यास्तु, किंतु जो भाव लेश्याएं होती है वे अंतर मुहूर्त परिवर्तिन्य, अंतर मुहूर्त में बदलती रहती भाव लेश्याएं। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचन है। परिणाम, परिणाम का अर्थ जो वैकृत शरीर मिला है उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द है वे, तो क्षेत्र विशेष निमित्त वशात, क्षेत्र विशेष के निमित्त के प्रभाव से अति दुख हेतव, अत्यंत दुख के हेतु होते हैं। अब इंसान को अगर एक फोड़ा हो जाए तो उसको बेचैनी होने लग जाती है, वहां तो जीवन भर ऐसे ही परिणाम होते रहते शरीर में, अत्यंत दुख के कारण होते। अशुभ तरह देहाश्च तेषाम, और उनके शरीर कैसे होते हैं, अशुभ नाम कर्म उदय आपादित, अशुभ नाम कर्म उदय अत्यंत अशुभ तरह, अशुभ नाम कर्म उदयात अत्यंत अशुभ तरह, अशुभ नाम कर्म के उदय से अत्यंत अशुभ से भी अशुभ होते हैं। विकृत आकृतियों हुंड संस्थाना दुर्दर्शना, विकराल आकृति होती है, हुंड संस्थान होता है, बेडौल शरीर होता है, और दुर्दर्शना देखना भी मुश्किल होता है उनको, इतने भयंकर होते हैं। तेषाम उत्सेद, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये ऊंचाइयों भी अगर किसी को स्मरण में रखना हो तो लिख सकते हैं। प्रथमायाम सप्त धनुषी त्रयोहस्ता षडंगुलयः, पहली पृथ्वी में सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल ऊंचाई होती है। अधोधो द्विगुण द्विगुण उत्सेद, नीचे नीचे इससे डबल डबल होते जाएंगे, सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल पहली पृथ्वी की ऊंचाई है। दूसरी पृथ्वी में चौदह धनुष छह हाथ, और छह अंगुल के बदले वहां पर सात हाथ हो जाएंगे, क्योंकि बारह अंगुल का एक हाथ होता है। तो अच्छा, इन द फर्स्ट फर्स्ट अर्थ देयर आर द हाइट ऑफ दोज हेलिश बींग्स इज सेवन धनुष, थ्री हैंड्स एंड सिक्स फिंगर ब्रेड्स this much, and this height becomes double double down down downwards simultaneously। तो आभ्यंतरासद वेद्योदय, अंतरंग की असाता वेदनी के उदय होने पर सती अनादि पारिणामिक शीतोष्ण बाह्य निमित्त जनिता सुतीव्र वेदना भवन्ति। अनादि पारिणामिक का अर्थ होता है कि वहां भूमि का ही ऐसा स्वभाव है, तो उस भूमि में बहुत अधिक तीव्र वेदना होती है, शीत और उष्ण की जो वेदना होती है वो बहुत बहुत तीव्र होती है। फिर कहते हैं कि चार पृथ्वियों तक उष्ण वेदना ही है, ये भी स्मरण में रखने की बात है, चार पृथ्वी पर्यंत उष्ण वेदना ही है। पांचवी में द्वे नरक शत सहस्रे, 2 लाख नरकों तक उष्ण वेदना है, अध शीत वेदनम 1 शतसहस्रम, नीचे के 1 लाख नरकों में शीत वेदना है। षष्ठी सप्तम्यो शीत वेदनान्यव, छठी और सातवीं पृथ्वी में शीत वेदना ही है। शुभं करिष्याम इति अशुभतरमेव विकुर्वन्ति। अब उसमें कभी किसी नारक को ऐसा भाव होता है कि मैं कोई सुंदर रूप बना लेता हूँ, मेरा रूप बहुत बेकार लग रहा है, तो वो ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप बना लेता है। सुख हेतु उत्पादयाम, बोलता है कि मेरे पास विक्रिया की शक्ति है तो कोई सुख के साधन उत्पन्न कर दूं। दुख हेतु नैव उत्पादयन्ति, दुख हेतु नैव उत्पादयन्ति, दुख के कारण ही उत्पन्न कर डालते हैं। तैते भावाधो शुभतरा वेदितव्या, नीचे नीचे और ज्यादा तीव्र होते चले जाते हैं। किमें तेषां नारकाणां शीतोष्ण जनितमेव दुःखम् उत अन्यथापि भवति इत्यतः। क्या इन नारकियों को शीत और उष्ण की ही पीड़ाएं होती है या और भी दुख होते हैं? तो आचार्य कहते हैं परस्परोदीरित दुख, एक दूसरों के दुखों को वो उदीरित करते हैं। अवधि से, अवधि ज्ञान से वो जितनी दूरी से उपद्रव हो रहे हैं उनको जान लेते हैं। तो जो दुख के हेतु अपनी तरफ आ रहे हैं उसके कारण भी तो दुख होता है ना। जैसे कोई खबर आ जाए कि आपके यहाँ पर इनकम टैक्स वाले रेड मारने के लिए आ रहे हैं तो फिर पहले से टेंशन आ जाता है। तो इनको अवधि ज्ञान से पहले ही पता चल जाता है कि ये उपद्रव होने वाला है, तो उससे वो दुखी होते हैं। और प्रत्याशत तो जब एकदम निकट आ जाते हैं तो एक दूसरों को देखकर उनकी कोपाग्नि क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पूर्व भव का स्मरण भी कदाचित हो जाए तो अति तीव्र अनुबद्ध वैर होकर श्रृगालादिवत स्वाभिघाते प्रवर्तमान, सियार और कुत्तों के समान एक दूसरों को मारने में तत्पर हो जाते हैं। आपने कुत्तों की लड़ाई तो देखी होगी, कैसे लड़ते हैं, नोचते हैं। एक बार तो एक कुत्ते ने जब दूसरे कुत्ते का गला पकड़ लिया था तो उसको लोग लाते मार रहे थे, उसको लोग बेल्ट से मार रहे थे, हर प्रकार से उसको मार पीट रहे थे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था गला। उस इनको पटक भी दिया तो भी नहीं छोड़ा उसने, फिर अंत में जैसे तैसे छूट गया वो। तो ये स्थितियां वहां पर होती हैं। अपनी विक्रिया कृत असी याने तलवार, वासी याने बसूला, परशु याने कुल्हाड़ी, भिंडी माल भी एक शक्ति अस्त्र होता है शक्ति, फिर तोमर कुंत याने भाला और अयोधन ये भी एक हथियार होता है। कुंता योधनादि भेर आयुधे, इन आयुधों से इन हथियारों से स्वकर चरण दश नैश, अपने हाथ पैर और दांतों से भी छेदन भेदन तक्षण दंशन आदि भी काटना गड्ढे कर देना और तक्षण और दंशन आदि डस लेना, इन सब चेष्टाओं से परस्पर से अति तीव्रम दुखम उत्पादयन्ति, एक दूसरे को अत्यंत तीव्र दुख उत्पन्न करते हैं, वो चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, सभी को होती है स्थिति। अकेले मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, वहां का स्वभाव भी वैसा है। तो विचारने की बात है कि एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। वहां का वैसा स्वभाव है और स्वभाव में तर्क नहीं चलते। सभी पूरे, ये तो सातों पृथ्वियों की बात हो रही है। अब 3 नरक की बात अभी अभी बता रहे हैं इस सूत्र में, 5वें सूत्र में। किम एतावान् एव दुखोत्पत्तिकरण प्रकार उत अन्योपि, बस इतने ही दुखों के कारण होते हैं उनमें या और भी कोई होता है? कश्चिदस्ति तत आह, कोई और भी दुख है? तो आचार्य कहते हैं संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। जो तीव्र कषाय वाले असुर कुमार देव हैं, असुर जाति के जो देव हैं अंबावरीश, वो प्राक चतुर्थ्या चौथी पृथ्वी से पहले तक, तीसरी पृथ्वी तक जा जा करके उनको लड़ाते भिड़ाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम भूल गए क्या, इसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए थे, इसने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी, इसने तुम्हारे बच्चों को परेशान किया था, इसने ऐसा किया था वैसा किया था। अब उसका क्रोध एकदम भड़क जाता है, वहां का वैसे ही भड़का हुआ रहता क्रोध, और फिर वो लड़ते हैं तो शांत बैठने ही नहीं देते। जी देखो बहु सागर लोस है, और इतने सागरों तक वो सहन करते हैं उस दुख को। संक्लिष्टासुर लिखा है, सारे असुर नहीं, कई असुर तो भगवान के भक्त भी होते हैं। समोसरण में भवनवासियों का जो कक्ष है ना, वहां पर असुर कुमारों के जो इंद्र होते चमर वैरोचन, वो लोग भगवान की भक्ति धर्म श्रवण आदि में तत्पर रहते हैं। लेकिन ये संक्लिष्ट असुर जो है, तीव्र कषाय वाले जो असुर है उनकी बात है, वो वहां जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं, ये यहां आकर के अपने कर्मों को दुर्बल करते हैं भगवान की भक्ति अधिक करके। अंतर है, एक ही कुटुंब में कई लोग अलग प्रकृति के होते हैं, दूसरे अलग प्रकृति के होते हैं। न सर्वे असुरा, सारे असुर ऐसे नहीं होते। किन तरवी, कौन से असुर ऐसा करते हैं? अंबावरीशाद है एव केच नहीं थी। कुछ असुर होते हैं लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, उनके नाम अंबावरीश आदि है। वो क्या करते हैं असुर? तो बोले सुतप्तायो रस पायन, तपे हुए लोहे को पिघला कर उसको पिलाना, और निष्टप्तायस स्तंभालिंगन, किसी ने अब्रह्म कुशील का पाप करके नरक को प्राप्त किया हो तो फिर उसको तपे हुए लोहे की स्त्री से उसका आलिंगन कराते हैं। फिर कूट शालमल्यारोहण, कूट और शालमली जो कांटे वाले वृक्ष हैं उन पर उनको चढ़वाते हैं, अवतरण उतारते भी हैं, आयोधन अभिघात, आयोधन जो अस्त्र उसके द्वारा उनको मारते पीटते मुद्गर वगैरह से, वासी क्षुर तक्षण क्षार तप्त तैल अवसेचन, खारे तपे हुए तेल को उनके ऊपर सींचते हैं, अयह कुंभी पाक। अब कुंभी पाक जो होता है वो एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन ऐसे उल्टा रखते हैं और अंदर कोई चीज पकाते हैं, ऐसा अभी औषध बनाते समय तो वैद्य लोग करते हैं, बाकी इधर रसोई में ऐसा होता है या नहीं पता नहीं। होता है औषध बनता है, आयुर्वेद बनता है, तो उसके अंदर डालकर इनको पकाते भी हैं नारकों को। और फिर ये सब वर्णन करने के बाद कई आचार्यों ने तो ऐसा भी लिखा है कि ये यहां के जीवों को समझ में आ जाए ऐसे दृष्टांत देकर उनको बताया कि ऐसी वेदना होती है। वहां कैसी वेदना होती है उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, ये तो समझाने के लिए अपन ये सब सुन करके समझ सकते हैं कि कितनी वेदना होती होगी, पर वास्तव में जो स्थिति है वहां की उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। फिर वैतरणी मज्जन, वैतरणी नाम की एक भयंकर पीप और खून से भरी हुई नदी है दुर्गंधित, उसका एक कण अगर यहां मध्यलोक में आ जाए यहां ऊपर पृथ्वी में तो उसकी दुर्गंध से योजनों तक के प्राणी सब नष्ट हो जाएंगे, उसमें उनको स्नान करने के लिए उतारते हैं, यंत्र निपीड़न, और उनको जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन होती है वैसे यंत्रों में उनको पेलते हैं। इन सब उपद्रवों के माध्यम से वो अंबावरिश जाति के जो देव होते हैं वो नारकों को परेशान करते हैं। पता नहीं उनका भी कैसा क्या वेर वैर रहता होगा कि वहां पहले से ही वो दुखी हैं और उनके दुख से उनको संतोष नहीं हो रहा, उनको और ज्यादा दुख देने के लिए ये सारे उपद्रव ऊपर से करते हैं अंबावरिश जाति के देव। बिल्कुल होता है, या वो तिरंज गति में तो आ सकते हैं ना, भवनत्रिक के देव और दो स्वर्गों के देव एकेंद्रीय जीव भी बन सकते हैं, मिट्टी पानी और वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात और कह रहे हैं, एवं छेदन भेदनादि भी शकली कृत मूर्ता मूर्ति नाम अपि, इस तरह छेदन भेदन आदि के माध्यम से शकलीकृत है मूर्तियां जिनकी, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गए हैं शरीर के जिनके, ऐसे तेषाम उन नारकियों का न मरण अकाले भवति, और समय में मरण नहीं होता है। दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में पढ़ा था कि देव और नारकों का मरण समय में नहीं, इतना सब होने के बाद भी नहीं मरते, कुतः क्यों, अनपवर्त्यायुष्कत्वात्, अनपवर्त्यायुष्क है। यद्यवम तदेव तावद उच्यताम नारकाणाम आयु परिमाणम अत्यताः। अब ऐसी बात है, ये तो बहुत दर्द की बात है, बहुत दुख की बात है कि ऐसी ऐसी वेदनाओं में भी जीव जीते हैं। अभी तो भव प्रत्यय वधिर देव नारकाणाम मात्र सुना था, अब तो पूरा स्पष्ट हो गया कि वो क्या भयंकर भव है उनका, जहां पर इतनी भयंकर वेदना होती है। अनपवर्त यानी अकाल में ह्रास, अपवर्त यानी ह्रास, और अनपवर्त यानी ह्रास से रहित। तो कहो कि उनकी आयु कितनी है, आप कह रहे हो कि उनकी आयु नष्ट नहीं होती इतनी वेदनाओं के बाद भी, तो कितनी आयु होती है। तो आचार्य कहते हैं, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, तेष्वेकत्र सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमा सत्वानां परास्थिति। हम उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं, जघन्य आयु बाद में बताएंगे, उत्कृष्ट आयु उनकी इतनी है, तेषु उन नरकों में एक सागरोपमा, पहले पृथ्वी में एक सागरोपमा आयु है, दूसरी में त्रि तीन सागरोपम, सूत्र देख सकते हैं आप, तीसरी में सप्त सात सागरोपम है उत्कृष्ट आयु, चौथी में दश दस सागरोपम है, फिर पांचवी में सप्तदश सत्रह सागरोपम है, छठी में द्वाविंशति बाईस सागरोपम है, अधिकतम आयु बता रहे, और सातवीं में त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा तैतीस सागरोपम आयु है। किनकी, नरकों की नहीं, नारकों की, सत्वानाम वहां के जीवों की परास्थिति उत्कृष्ट आयु होती है। इस प्रकार ये अधोलोक का वर्णन यहां पर पूर्ण होता है। नहीं, वो कुछ होते हैं ऐसे जो वो सब काम करते हैं, और सबको पता है कि ऐसी प्रकृति है, अनादिकाल से यही चल रहा है, तो कुछ उनको अपने कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, कौन बच सकता है। महावीर स्वामी के जीव का नरकवास जो है पूर्व भवांतर में, उसका वर्णन आता है उत्तर पुराण में, और ज्ञानार्णव ग्रंथ में इन नरकों में जब कोई जीव पहुंचता है तब वो क्या विचार करता है और कैसी उसकी स्थिति बनती वहां पहुंचने के बाद, तो जब तक ठाट से रहता है प्राणी, तब तक उसको पता नहीं चलता कि इसका फल क्या होगा। कुछ भी अनर्थ करता रहता है, उसको कोई विश्वास नहीं है कि कभी भविष्य में कुछ होने वाला है। अभी हम जी रहे हैं, ठाट से जी रहे, कुछ भी कर लो, मत खाओ पियो मौज करो। लेकिन ये आज तो ऐसा है कि इतनी खोज हो चुकी है कि कई लोगों को पता चल गया है कि ये पुनर्जन्म नाम की कई कोई वस्तु होती है। बहुत लोगों ने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर ब्रायन वेइस थे, अभी भी शायद हों पता नहीं, उनकी एक पेशेंट थी, उसको कोई तकलीफ थी। तो फिर उसने डॉक्टर ने अलग अलग तरह से उनका इलाज किया, वो ठीक नहीं हुई। फिर उनने सोचा कि हो सकता है कि कोई बहुत गहराई में कोई बात बैठी हो, अपन ये निकालते हैं। तो उनने हिप्नोथेरेपी चालू की, सम्मोहन चिकित्सा, और उसको हिप्नोटाइज किया और उसको बोले कि याद करो याद करो, कब से तुम्हें ये वेदना हो रही है स्मरण करो। बचपन से हो रही है, वो कहती है कि हाँ बचपन से हो रही है। ऐसे वो हिप्नोटिक स्लीप में थी, एक तंद्रा की अवस्था में, और याद करो, बोले कि मैं अंधेरे में हूँ, वहां भी मुझे ये वेदना है, माँ के गर्भ में। फिर उसके पहले तो वो जब पिछला जन्म बताती है तो डॉक्टर आश्चर्यचकित होता, उसको विश्वास ही नहीं था पिछले जन्म पर, वो मानता ही नहीं था। और वो पूछता जाता, और याद करो और याद करो, कई दिन हो जाते हैं और वो 86 जन्मों का वर्णन करती है, 86 जन्मों। कैथरीन उसका नाम था, डॉक्टर ब्रायन वेइस, अच्छे खासे डॉक्टर थे वो। तो ये चीज देखो, अब जो लोग नहीं मानते उनका आग्रह उनके पास है। सत्य अपनी जगह है और मान्यता अपनी जगह है। हो सकता है मान्यता सत्य से मेल ना खाती हो, और मान लो सत्य आपकी मान्यता के खिलाफ निकला तो आपका क्या होगा? सोचो, आप नहीं मानते पुनर्जन्म को, और मान लो पुनर्जन्म सच निकला, तो फिर आपका क्या होगा? ये सोचने की बात है। और आत्मवादी दर्शनों में पुनर्जन्म की मान्यता है, अनात्मवादी दर्शनों में नहीं है। तो वहां महावीर स्वामी के जीव का जो वर्णन किया है उसको पढ़कर अपने को आंसू आ जाते हैं। और ज्ञानानंद में वहां पहुंचने वाला जो पश्चाताप करता है उसको पढ़कर के आंसू आ जाते हैं। जिनेंद्र वर्णी जी से कभी किसी ने पूछा होगा कि आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि स्वर्ग और नरक होते हैं, तो उन्होंने कहा कि विज्ञान से, विज्ञान के कुछ ऐसे नियम हैं उनसे हम सिद्ध करते हैं। हम आपको तर्क युक्ति देते हैं कि यहां मनुष्य जीवन में या जानवरों के जीवन में सुख और दुख दोनों पाए जाते हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन जीवों ने कभी पहले पुण्य और पाप दोनों कर्म बांधे हैं। पर जिन जीवों ने हमेशा पाप किए हैं या जिन जीवों ने हमेशा पुण्य किया है, उनको कहां फल मिलेगा? ये जगह तो नहीं बनती। तो बोले जिन्होंने हमेशा पुण्य किया है उनको जो फल मिलता है वो वहां मिलता है, और जिन्होंने हमेशा पाप किया उनको जो फल मिलता है वो वहां मिलता है। एक युक्ति है, इस तरह अधोलोक का वर्णन पूर्णतः। जैनम जयतु शासनम।